और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जब कोई किसी शुद्ध भक्त के सानिध्य में आता है तो वह इतने ऊपर उठ जाता है कि वह सारष्टि, सारूप्य, सामीप्य या सालोक्य की भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता रहता है कि ऐसी मुक्ति एक प्रकार की इंद्र तृप्ति है। शुद्ध भक्तगण भगवान से सभी कभी भी अपने लाभ के लिए कुछ भी नहीं मांगते, यहां तक कि यदि उन्हें निजी लाभ प्रदान भी किए जाते हैं तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी एक आकांक्षा यही रहती है कि वे अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति से भगवान को तुष्ट कर सकें। भक्ति के इस सर्वोच्च रूप को भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। अतएव जब भगवान ने हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रसार करने के लिए कलयुग में अवतार ग्रहण किया तो उन्होंने दिव्य रागानुगा प्रेम से प्रेम के स्तर पर भक्तियों का भी वितरण किया। वे आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री चैतन्य के रूप में एक भक्त बनकर प्रकट हुए। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य महावर्ष श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव पे आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, खास करके उन भक्तों का जिन्होंने बहुत प्रेम से भी अभिषेक किया सुमिताय गौर चंद्र का, और आप सब जिन्होंने उसका दर्शन किया। दोनों के ऊपर श्री गौरचंद्र की कृपा ऐसी बरस रही है जैसे आज की सुंदर चंद्रमा जो है अपनी शीतल किरणें आप सब पर बरसा रही है। एसी हॉल की कोई जरूरत ही नहीं है यहां, फर्स्ट क्लास एयरकंडीशन। भगवान की कृपा देखिए, इतने सुंदर से बनाया है, ज्यादा ठंडी नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं, अनुकूल वातावरण। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में कई कारण हैं, पर आज हम केवल एक कारण के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब महाप्रभु अवतरित हुए, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य, वही श्री कृष्ण जब कलयुग में श्रीमती राधा रानी की अंग की कांति और भावना को धारण करके अवतरित हुए तो न केवल अपने आप से वो दिखाया श्रीमती राधा रानी की भावना क्या है, सर्वश्रेष्ठ भक्त की भावना क्या है, बल्कि बड़े सरल तरीके से उन्होंने वो बांटा भी। तो सचमुच में गौर पूर्णिमा मनाने का सच्चा लाभ ये है कि जिस हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए उसको हम समझे, हम स्वीकार करें अपने जीवन में और दूसरों को बांटे। यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु के वचन कह रहे हैं कि कहते हैं, आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचार्य भक्ति सिखाइमु सबारे। जब भगवान खुद एक भक्त के रूप में आते हैं तो सबसे श्रेष्ठ भक्त वही है। कोई भी स्वरूप जो भगवान धारण करके आते हैं परिपूर्ण अवस्था में उसको दिखाते हैं। जब भगवान मोहिनी मूर्ति बन के आए
उनसे सुंदर स्त्री आज तक में हुई न होगी। इसी तरह से जब भगवान भक्त बनकर आए, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं जिस प्रकार कभी कभी शिक्षक एक विद्यार्थी के स्तर पर आकर अ आ ई ई लिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आ ई सीख रहा है, पर एक विद्यार्थी के स्तर पर आकर सिखाता है। इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण कलयुग में भगवान बनकर न आए, न आकर भक्त बनकर आकर सिखाए। अनर्पित चरिंचिरा करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरी स्फुरत व शचिनंदन। तुलसीदास कविराज गोस्वामी अपने मंगलाचरण में महाप्रभु की जो योगदान क्या है वो और आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वचन कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि आपके हृदय में भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्रकट हो, आपको प्राप्त हो। तो क्या कृपा है? अनर्पित चरी चिराग, अनर्पित मतलब इससे पहले कभी नहीं दिया हुआ, अनर्पित इससे पहले कभी अर्पित नहीं किया गया। क्योंकि जब भगवान पिछले संभवामी युगे युगे हर युग में आते हैं, सत्य त्रेता युग द्वापर युग इत्यादि, पर इन युगों में जब आते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, असुरों का वध करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं उनको, और भक्तों को भक्ति प्रदान करके वैकुंठ तक पहुंचाते हैं। पर जब ये अवतार अनर्पित रागानुग भक्ति, साधारणतः भक्त जो है ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा करता है, पर ऐश्वर्य से जो शुद्ध प्रेम है वो शिथिल हो जाती है और उस प्रेम से भगवान बिक नहीं जाते। और जब शुद्ध प्रेम प्रकट होता है जैसे वृंदावन में, उससे वो बिक जाते हैं। तो अनर्पित चरिन चिराग, चिराग मतलब दीर्घ काल से, शास्त्र समझाता है ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी का जो आयु या अवधि है एक दिन का, ये भी समझ पाना बड़ा मुश्किल है हमारी बुद्धि से। एक कलयुग 432,000, उसका दुगुना द्वापर युग यानी 864,000, उसका तीन गुना 12,96,000 और उसका चारपट यानी 7,28,000। ये सत त्रेता द्वापर और कलयुग चार युग मिला तो एक महायुग कहलाता है। और एक महायुग जो चार युगों का एक मिलन है, ऐसे 71 बार चार युग होते हैं तो इसको एक मनवंतर कहा जाता है। 71 बार चार युग होते हैं तो मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन।
पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुहु, वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी की दिन की अवधि क्या है, एक दिन की 12 घंटे की अवधि, ऐसे हजार युग सहस्र युग, तो 14 मन्वंतर में अभी जो है 7वां मन्वंतर चल रहा है, स्वयंभू मनु का ये मन्वंतर है और इस मन्वंतर के 27 महायुग हो चुके हैं
और 28वां महायुग के द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं और अपने पूरे मूल गोलोक धाम को लेकर आते हैं। प्रेम आते हैं हमें जो हम सोच भी नहीं सकते। कल इसको विस्तृत रूप से हम थोड़ा चर्चा करेंगे, पर जाने के बाद लीला समाप्त करके चले जाते हैं और चले जाने के बाद सोचते हैं
मैंने सिर्फ दर्शन तो करा दिया लोगों को, पर देना चाहिए ना उनको कृष्ण प्रेम, देना चाहिए जिसे मैं बिक जाऊंगा उनके हाथों में। और ये सोचकर महाप्रभु फिर से अवतरित होते हैं कलयुग में ब्रह्मा जी के एक दिन में। आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली हम, केवल 500 साल पहले महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। साल में एक बार अगर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में हमको मिल गया टाइम पे, कितने सौभाग्यशाली। ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं और वो एकदम अभी अभी आके गए, 500 साल कुछ भी नहीं। तो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, क्या प्रदान कर रहे हैं वो? ये महाधन, सबसे बड़ा धन। और ये महाधन क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हैं तो वहां वो कहते हैं, ये प्रेम धन का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इससे बड़ा धन कोई नहीं है इस संसार में, इस संसार में नहीं, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में नहीं, पूरी सृष्टि में इससे बढ़कर कोई धन नहीं है। तो और ये सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है भगवान के सेवा, भरोसा। वो किसी को मिल जाए तो सबसे बड़ा धन है। उसके पीछे जी शिव जी, वो भी लाला शंकर महाजगबंधन, शंकर जी जी एक विस्तृत रूप है उनके, विस्तृत रूप से आए। तो भगवान की सेवा और सेवकों की सेवा, गोपी भर्तुर पद कमलेर दास दास अनुदास, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। महाप्रभु ने कहा मैं सन्यासी नहीं हूं, गृहस्थ नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, वानप्रस्थ नहीं हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं, मैं कौन हूं? गोपी भर्तु, गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण है, उनके दास दासानुदास। तो ये धन, सबसे बड़ा धन क्या है? तीन चीज, कृष्ण, कृष्ण का स्मरण और कृष्ण की सेवा, ये सबसे बड़ा धन है। कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का प्रेम मतलब क्या? कृष्ण, कृष्ण प्रेम और कृष्ण की सेवा। कृष्ण की, कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण का स्मरण, जिसे हम प्रेम करते हैं उसका हमेशा हम स्मरण करते हैं। अगर स्मरण नहीं है तो प्रेम कैसा? बार बार याद आना चाहिए। तो यह सचमुच में। और सबसे बड़ा गरीबी क्या है, दरिद्रता क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के अंत में चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं वो, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम धन बिना, प्रेम धन के बिना व्यर्थ और दरिद्र जीवन। धर्म सुनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथास्यः न उत्पादयेत् यद्यतिम श्रमये वहि केवलम्। हम ये सब नियमों का पालन कर रहे हैं, धार्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं, पर प्रेम जागृत नहीं हुआ तो हमारा जीवन व्यर्थ है, दरिद्र जीवन है। तो दरिद्र आदमी कौन है? इस दुनिया में दरिद्रता को कैसे देखते हैं हम लोग? जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, जिस व्यक्ति के पास कोई संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, वो दरिद्र आदमी है। जिसके पास एक पदवी नहीं है और प्रतिष्ठा नहीं है समाज में, वो दरिद्र आदमी है। पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चैतन्य महाप्रभु की दृष्टिकोण से दरिद्र आदमी कौन है? भले कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, भले कितना भी समाज में प्रतिष्ठित क्यों ना हो, यहां तक कि देवताओं की पदवी भी क्यों ना उसे प्राप्त हो, पर अगर कृष्ण के साथ उसका संबंध नहीं है, कृष्ण का स्मरण करने का एक उसे अवसर नहीं मिला, कृष्ण की सेवा करने की उसे अगर अवसर नहीं मिली तो वो दरिद्र जीवन है। भक्तों के लिए ऐसा जीवन नहीं चाहिए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, कीट जन्म हाओ यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही मोरा आश। बोले कीड़े का जन्म मुझे चलेगा प्रभु, पर आपके भक्तों के घर में हो, जहां हमेशा हरिनाम होते रहे, स्मरण करते रहो, सेवा का मौका मिले, जो भी ग्रहण करो वो भगवान के प्रसाद के रूप में हो। पर आपके विमुख होकर ब्रह्मा जी का भी जन्म मुझे नहीं चाहिए, दरिद्र जीवन है वो। ये परिभाषा है महाप्रभु का महाधन, और ये पात्र अपात्र ना देखे स्थाना स्थान, जे ही जहां पाए तहां करे प्रेम दान। और माया मतलब क्या? माया मतलब ये, माया एक बद्ध जीव को विश्वास दिलाती है कि तू मालिक है, ईश्वरो अहम, अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। जितना तू नियंत्रण कर सकता है उतना तू यशस्वी है इस दुनिया में। धन प्राप्त कर। धन क्यों चाहिए? क्योंकि जिसके पास धन है लोग उसे आकर्षित होते हैं, कृष्ण यानी सर्व आकर्षक, क्योंकि वो षडैश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्य, षडैश्वर्य क्या है? ऐश्वर्यस्य धन, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य शक्ति, यशः श्रियः शारीरिक सुंदरता, ज्ञान वैराग्य, षण्णम भाग इति गणा। तो लोग भी षडैश्वर्य में से एक ऐश्वर्य भी मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा यश मिल जाए, थोड़ा अपने आप को वैरागी जैसे दिखाए, शारीरिक सुंदरता हो, तो समझते ये बड़ा धनी आदमी है। क्यों? क्योंकि लोग उनसे आकर्षित होते हैं। तो इस दुनिया में धन की परिभाषा ये है, किस हद तक आप लोगों को नियंत्रण कर सकते हो, एक ऐसा पदवी जहां आप जो बोले वो हो। तो स्वाभाविक रूप से इसके पीछे पूरी दुनिया लालायित है। पर और माया कहती है कि तुम जितना धन कमाओगे इस दुनिया में उतना तुम सुखी होगे, उतना तुम सुरक्षित रहोगे, उतना सुरक्षित महसूस करोगे आप। धन नहीं है तो कल मेरा कौन देखभाल करेगा, कल मेरा क्या होगा? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान की चरण जाता है, भगवान उसके पीछे खड़े हुए हैं। अरे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान पीछे खड़े हैं तुम्हारे, तो फिर क्या चिंता है? निश्चिंत हो सकता है, श्रीवास ठाकुर जैसे निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, भगवान की सेवा कर रहा हूं, और क्या चाहिए? जो चाहिए मुझे, जो जरूरत है, वो जितना चाहिए देंगे वो, मुझे विश्वास है। ये विश्वास के साथ पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में, भगवान के स्मरण में, भगवान की पूजा में लगना, ये सबसे बड़ा धन है। पर जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और अपने आप को शरीर और शरीर के उपाधियों से पहचान अपना करते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं धनी हूं, इस तरह से जो भी उपाधियां, और उपाधियों से द्वंद्व आता है, हर एक उपाधियों से द्वंद्व जुड़ा हुआ है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे लिए अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो उपाधियों के जैसा एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर मैं एक नाव में जा रहा हूं और वो समुद्र में जा रहा है और समुद्र की लहरें इधर उधर नाव हिला रही है, तो उस हद तक, जित हद तक मैं अपने आप को नाव समझता हूं, तो नाव की परिस्थिति मेरी परिस्थिति है। पर जब मैं समझता हूं कि मैं नाव नहीं हूं, मैं नाव के अंदर बैठा व्यक्ति हूं, तो नाव कितना भी हो उससे उसका असर नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता। लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र में वाम भसा। इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा में लगा हुआ है और इस भावना से सारे कर्तव्यों को कर रहा है, सारे उपाधियों को, गुरु न सस्यात्, स्वजनों न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जरी न सस्यात्, पिता हूं तो पुत्रों को या बच्चों को मैं यही दूंगा, यही धन दूंगा। पिता जाते वक्त धन दे के जाता है ना अपना सारा धन, या कर्जा दे के जाता है या धन दे के जाता है, दो ही तो चीज करता है। ये धन मुझे देना है, अगर गुरु हूं तो शिष्यों को यह धन देना है, नहीं तो कैसा पिता। हमारे एकमात्र पिता हैं, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो, वही सबसे बड़ा धन है। और वो नहीं दिए तो फिर कैसे पिता, कैसी माता। इसीलिए हम देखते हैं भरत ने अपनी मां को त्याग दिया, बलि महाराज ने अपने तथाकथित गुरु को त्याग दिया, बोले ऐसा गुरु जो भगवान को शरण जाने से ना कह रहा है, ऐसी माता जो भगवान को दूर निकाल रही है अपने जीवन से। रावण ने अपने भाई को त्याग दिया, विभीषण ने, क्यों, क्या ऐसा कैसा भाई है ये जो हमें राम की शरण जाने से, प्रभु की शरण जाने से निकाल रहा है। तो इस तरह से जब हम इस भावना से जीवन जिएंगे, तब कोई भी द्वंद्व हो, कोई भी उपाधि हो, संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होंगे। क्यों, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम हर स्थिति में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। हर स्थिति में सिर्फ एक प्रश्न पूछना, इस स्थिति में मैं भगवान के निकट कैसे जा सकता हूं, भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूं, भगवान से प्रेम कैसे कर सकता हूं, भगवान की शरणागति कैसे कर सकता हूं। ये एक भावना, ये एक प्रश्न हमारे जीवन में हमेशा रहे, दुख हो या सुख, मान हो या अपमान, ये एक प्रश्न रहे तो हम बड़े धनी आदमी हैं और इस संसार के द्वंद्वों से कुछ असर नहीं होगा, वो मुक्तात्मा है। नारद मुनि पिछले जन्म में जब दासी के पुत्र थे, जब उन्होंने भक्ति वेदांतों से यह ज्ञान प्राप्त किया, तब उनकी मां को जब सांप काट के उनकी मां गुजर गई, पूर्ण रूप से उन पर निर्भर थे, उनके पिता नहीं थे, केवल माता थी, 5 साल के बच्चे थे वो, बहुत बड़ा दुर्घटना उनके जीवन में घटा, पर वहां भी उन्होंने कृष्ण का एक हाथ देखा कि वो जो बहुत बड़ा एक श्रृंखला था जिसमें मैं बंधा हुआ था, वो भी भगवान ने निकाल दिया। दुर्भाग्यवश या सौभाग्य, अमंग शुभ या अशुभ, इस दुनिया में शुभ मतलब क्या, लॉटरी लग गया तो शुभ, दरिद्रता आ गई तो अशुभ, पर भक्तों की दृष्टिकोण अलग होती है। शुभ यानी वो चीज जो हमें भगवान के निकट लाया, भगवान का स्मरण कराया, भगवान की शरण जाने में प्रेरित किया। और अशुभ मतलब वो परिस्थिति, वो समय और वो दिन जिस दिन हम भगवान से के सेवा से दूर हो गए, भगवान के स्मरण से दूर हो गए, भगवान के संबंध से भूल जा रहे हैं और दूर चले जा रहे हैं, वो अशुभ है। ये दृष्टिकोण हो जाता है। तो सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? सबसे सुरक्षित स्थान वो है जहां कृष्ण का स्मरण हो रहा है, कृष्ण की सेवा हो रही है। नवें स्कंद में अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भगवान, साक्षात भगवान दूर्वास मुनि को कहते हैं कि हे दुर्वास मुनि, आप अम्बरीश महाराज पर प्रहार किए, उनको मारने का प्रयास किए, उनसे आप ईर्ष्या किया, पर उनकी परिस्थिति क्या है मालूम? वो कहते हैं, मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत् काल विप्लुतम्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जो दुर्वास मुनि को भगवान ने बताया। मत सेवया प्रतीतम ते, जो इस धन का, जिसके पास करोड़ है वो 10 रुपये के पीछे पागल होगा, 100 रुपये के पीछे पागल होगा? अरे करोड़ों में खेल रहा है वो, उसके लिए 1 रुपया 10 रुपया कुछ नहीं है। मत सेवया प्रतीतम ये, जो मेरी सेवा का आनंद ले रहा है, उस धन को प्राप्त किया है, सालोक्यादि चतुष्टयम्, 4 प्रकार की जो मुक्ति है, भगवान के लोक में जाना, वैकुंठ में जाना, सालोक्य सारष्टी, भगवान के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सामीप्य भगवान के समीप निवास करना, और सारूप्य भगवान का रूप, जय विजय, जैसा हम देखते हैं, आप कोई भी विष्णु मंदिर में जाएंगे तो बाहर भी चतुर्भुज 2 खड़े हैं, कौन है वो? विष्णु जैसे ही दिखते। पहली बार जब मैं मंदिर गया छोटे उम्र में, तो मैंने मेरी माँ से पूछा, ये विष्णु के मंदिर के बाहर जो द्वारपाल खड़े हैं, 2 विष्णु, वो भी विष्णु है क्या? विष्णु तो बाहर ही खड़े, अंदर कौन है फिर? बोले नहीं नहीं नहीं, ये विष्णु नहीं है, ये विष्णु के द्वारपाल है। तो बोले उनके 4 हाथ क्यों है? बोले चुप, बड़बड़ करता है, चल अंदर। अब ये है बस, 4 हाथ है तो मैं क्या करूं, चलो अंदर। शंख चक्र गदा पद्मलिय धारण किए हुए, सारूपी मुक्ति। तो भगवान कह रहे हैं दुर्वास मुनि से, हे दुर्वास, तू अम्बरीश महाराज से ईर्ष्या करके उस पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है तू, पर उसकी चेतना क्या है? वो कैसा धन प्राप्त किया है देख। मत सेवया प्रतीतम ते, वो मेरे सेव में इतना संतुष्टि है, तृप्त है वो, सालोक्यादि चतुष्टयम्, अरे वैकुंठ में उसको ये 4 मुक्ति मैं प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं देता भी हूं। न इच्छन्ति, उनको इच्छा नहीं है उसकी, सेवया पूर्णा, संपूर्ण रूप से संतुष्ट है वो। कुतोन्यत् काल विप्लुतम्, फिर काल में नष्ट होने वाला सुंदर शरीर, धन, यौवन, पुत्र, परिजन, संपत्ति, घर, गाड़ी, ये सब जो काल के में ऐसे ऐसे जैसे एक साबुन के वो गोले फूटते हैं, ऐसा फूटता जाता है। कमल दल जल जीवन तलमल, ये जन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन तलमल। इस छोटी छोटी संपत्ति को, तथा कथित संपत्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना पाप कर्म करता है, कितना अपने आप को अधोगति में ले जाता है। यही वसुदेव ने कंस को कहा, अरे मृत्यु तो वैसे भी आएगी, अभी नहीं तो 100 साल के बाद आएगी। अब और ये तो नहीं मारने वाली तुझे, ये एक आकाशवाणी हो गया, वैसे भी आकाशवाणी हुए बिना नहीं मरेगा कोई, वो आकाशवाणी चाहिए, ये तुम लोग सब मरने वाले, क्या आकाशवाणी? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, पैदा होने के बाद एक चीज, भले कोई ज्योतिष बोलने की जरूरत नहीं, मरेगा एक चीज तो गारंटी है, अभी नहीं तो 100 साल के बाद मरेगा। वो मरने से पहले तू ऐसा काम क्यों कर रहा है? तेरी ही बहन, तू बड़ा भाई है, पिता जैसा है उसके लिए, स्त्री है वो, उसका विवाह का दिन है, हाँ? गिफ्ट दे रहा है तू, बड़ा उपहार दे रहा है वो, शादी का उपहार, तलवार लेके उसका सर काट के उसके हाथ में दे रहा है, क्या परिस्थिति तेरी होगी? तो इतना छोटी चीज के लिए, तेरा एक इंद्र तृप्ति बनाए रखने के लिए, थोड़ा बहुत धन का व्यक्ति क्यों धन कमाना चाहता है? धन क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि धन है तो चीजें उपलब्ध हो सकती है, और चीजें हैं तो इंद्र तृप्ति हो सकती है। इसीलिए मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, मैं भोग करने कर सकता हूं। तो भोग की जो ये एक माध्यम है, पैसे भी कुछ है नहीं, पैसा कोई चाटेगा कोई हाथ में, पर पैसे में मैं जो चाहिए खरीद सकता हूं और जो चाहिए वो मिल सकता है। यस्याहम अनुगृहणामि हरिष्ये तद् धनं शनैः। भगवान कहते हैं मैं किसी को खास कृपा देता हूं उसका सारा धन ले लेता हूं, पहला इंस्टॉलमेंट। क्यों? क्योंकि जब धन चला जाता है तो धन के पीछे लगे हुए लोग तथाकथित आपके मित्र वो बोलेंगे अभी पैसा नहीं है, तो जो मेरे को सप्लाई कर सकता था वो आज सप्लाई नहीं कर पाएगा, वो तो बोलता है दूर रहो उससे। उस समय सही मित्र कौन है समझ में आ जाता है, जब जेब में पैसा नहीं हो सब लूट गया तब समझ में आता है मित्र कौन है और शत्रु कौन है। तो ये भगवान की कृपा है, दिखाते हैं अरे इस चीज के लिए पीछे पड़ा है, तेरे लिए तेरा जान लेने के लिए लोग पीछे पड़े हैं तथाकथित मित्र के रूप में, जब से जल्द से जल्द मरेगा तो सारा धन मेरे मिलेगा, तो ये धन नहीं है। तो भगवान कहते हैं दुर्वास मुनि से मत सेवया प्रतीतं ते सालोक, वैकुंठ धाम के चार प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करते मेरे सेवा के बिना, तो इनको काल में नष्ट होने वाले ये सब पदवी और ये छोटे मोटे धन या इस संसार की जो तथाकथित नश्वर चीजें हैं, क्या उससे मैं प्रलोभन कर सकता हूं इनको? क्योंकि भक्त कहता है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम। फिर कहते हैं मुक्ति भी नहीं चाहिए इसको, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तुई। प्रभु मुझे नरक में रखो, इस संसार में ही रखो चलेगा, मुझे वैकुंठ जाने की भी जरूरत नहीं है, पर कभी मैं आपको भूलू नहीं, कभी मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ू, आपके साथ जो संबंध है वो मेरा कभी ना टूटे, आपको कभी भूलू नहीं, आपकी सेवा कभी छोड़ू नहीं। यह हनुमान जी का प्रार्थना है प्रभु रामचंद्र से, प्रभु रामचंद्र ने मांगा तूने इतना सेवा किया कुछ मांग हनुमान, मैं कुछ देना चाहता हूं तुझे। भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभु अहम दासः इति यत्र विलुप्यते। प्रसिद्ध हनुमान जी के वाक्य है ये, भवबंध छिदे तस्यै स्पृहयामि, स्पृह मतलब इच्छा, न मुक्तये, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जहां भवबंधन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर जो पड़े हुए हैं उस चक्कर से मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहिए, अगर उस मुक्ति में आप मेरे प्रभु हो और मैं आपका दास हूं, ये विचार जहां चले जाता है यानी आप में एक होकर मैं भगवान बन जाऊंगा, ऐसी नहीं चाहिए, मेरे लिए नरक है वो, जहां आपकी सेवा नहीं है वो मेरे लिए नरक है। गोपियां नरक जाने के लिए तैयार थी भगवान के सरदर्द को एक क्षण के लिए कम करने के लिए, ये प्रेम का लक्षण है, उनके लिए नरक जाना कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं हम लोग, भगवान का सरदर्द तो कम हो रहा है, पर भगवान का सरदर्द हो रहा है ये सुन के उनका हृदय में नरक जैसा हो जाता है, भगवान का सरदर्द हो रहा है, हमारे प्रभु का सरदर्द हो रहा है, उस सरदर्द को दूर करने के लिए हम नरक जाने के लिए तैयार है, वो नरक नरक नहीं है हमारे लिए, वो वैकुंठ है, वो परम वैकुंठ में है, हम देख रहे हैं भगवान सरदर्द हो रहा है उनको, आपको भगवान को कभी सरदर्द होता नहीं है, हम ही लोग उनको सरदर्द कराते हैं बस, सुधरते ही नहीं हम लोग, वो बेचारे धर्म संस्था संभवामी युगे युगे आके बोलते मेरा सरदर्द दूर करो आ जाओ वापस, क्यों तड़प रहे हो उधर भड़बड़ क्यों तड़पड़ा रहे हो, सबसे बड़ा सरदर्द हम ही लोग हैं। पर भक्तों के लिए ये सुनना कि भगवान का सरदर्द हो रहा है यही सबसे नरकीय स्थिति है उनके लिए, नरक जैसा दुख होता है उनको, यातना होती है उनको, तो भगवान के सरदर्द दूर करने के लिए खुद नरक में जाएंगे कोई चिंता नहीं उनको। यही तो शिवजी पार्वती को कहते हैं अरे तूने चित्रकेति को शाप दिया कि तू अधोगति में चला जाएगा, नरकीय स्थिति में जाएगा, राक्षस योनि को प्राप्त करेगा, उसे कोई चिंता नहीं है, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। नारायण परा सर्वे, जो पूर्ण रूप से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, न कुतश्चन बिभ्य, किसी परिस्थिति से डरते नहीं है वो। स्वर्ग हो, अपवर्ग हो, अपवर्ग यानी मुक्ति, या नरक हो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, सब उनके लिए तुल्य है। जब तक भगवान की पूजा हो रही है, भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है। अब सवाल उठता है, यह धन कहां मिलता है महाराज? मिलता कौन सी मार्केट में? भाव क्या है उसका? क्या भाव चल रहा है अभी, ताकि मैं भी थोड़ा खरीद लूं? ये धन, प्रेम महाधन, केवल कृपा से मिलती है, केवल कृपा। जिस व्यक्ति को कृपा मिलेगी भगवान की, उसे यह धन मिलेगा। यही एक करेंसी है, यही उसका मतलब तरीका है स्वीकार करने का, यह धन प्राप्त करने का। और यह कृपा कहां मिलेगी? शुद्ध भक्तों के संग में। इसीलिए साधु संग, साधु संग, सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सबसे बड़ी सिद्धि यही है, लाभ। इसीलिए शास्त्र कहता है साधुओं का संग कर, साधुओं का संग करो। क्यों? लव मात्र साधु संग, एक क्षण के साधु संग में सर्व सिद्धि होए। क्योंकि एक भक्त के जीवन, शुद्ध भक्त के जीवन में हम जाके देखते हैं किस चीज को वो भूल देता है। करुणा मिल रही है, पर अगर भक्ति से दूर है, वो बोलता है नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो भगवान की भक्ति से दूर ले जा रहा है, भगवान का विस्मरण हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति भी हमें, मुझे नहीं चाहिए, भले दुनिया उसको मूल्य देती हो, मुझे नहीं चाहिए वो। बोले क्या पागलपन है ये? बोले हां, ये पागलपन है, पूरी दुनिया पागल है। एक्चुअली जीवन का उद्देश्य है पागल होना। आप बोले क्या बोल रहे हो महाराज? बोले हां, जीवन का उद्देश्य है पागल होना, क्योंकि पागल हुए बिना आदमी रह नहीं सकता। न्यूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, इंद्र तृप्ति के पीछे काम क्रोध से पागल हो जाता है आदमी, पागल जैसे काम करता है, क्रोध होकर पागल जैसे कार्य करता है, पागल जैसे बोलता है, काम वासना से लुप्त होकर पागल जैसे काम करता है, या प्रेम के पीछे पागल, या काम के पीछे पागल, या प्रेम से पागल। चैतन्य महाप्रभु आदर्श रूप से गुरु के पास गए, ईश्वरपुरी के पास, और बोले किब मंत्र दिला गोसाई किब तारा बोल, जपिते जपिते मंत्र होइल पागल। अरे कैसा मंत्र दिया गोसाई, इसमें क्या बल है, जितना जपता हूं उतना पागल हो गया मैं, पागल जैसे नाचता हूं, मेरे को चिंता ही नहीं दुनिया क्या कहेगी, लोग कहते तू पागल हो गया। तो उनके गुरु ने कहा यही तो मुझे, मुझको भी चाहिए, यही तो भागवत कहता है जीवन की, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्ते उच्चई हसति अथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। जो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गया है, वो क्या करता है, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, भगवान के नाम जब जपना शुरू। अब तुकाराम महाराज को देखिए, जब वो लेना शुरू करते थे भूल जाते थे दुनिया, लोग कहते थे पागल हो गया ये, तो क्या आता, वेड़ा डाल। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने इष्ट देव की जब स्मरण हो जाता है, कीर्तन शुरू करते हैं, जात अनुराग, कृष्ण प्रेम इतना उभर आता है, द्रुत चित्त, पूर्ण चित्त को मग्न कर देता है, उच्च ही हसती, कभी घंटों घंटों हंसता है, कभी रोता है, कभी पागल जैसे गाता है, उन्मादवत पागल जैसा नृत्य थी, नाचने लगता है। गोड तुज रूप गोड तुज नाव गोड तुज रूप, पागल जैसे नाचते। क्यों नहीं, यही तो पागलपन है, यही प्रेम सबसे बड़ा धन। उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, दुनिया की परवाह नहीं करता। जो कहते हैं तू पागल हो गया, देख हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितना धन है, तू भी कमा ले, आ जा, क्या कर रहा है, जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है। एक सोचता है कि दूसरा अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, पर दूसरे को मालूम है कि उसने बर्बाद किया है, बस यही अंतर है। पागल खाने में हर एक पागल व्यक्ति सोचता है कि डॉक्टर पागल हो गया जो मेरे को पागल समझता है, पर डॉक्टर को मालूम है कि ये पागल है, यही अंतर है। एक समझता है कि दूसरा पागल है, पर दूसरे को मालूम है कि ये पागल है। जो अपने आप को शरीर समझता है वो सोचता है कि आत्मा के पीछे जो धन कमा रहा है, आत्मा का धन कमा रहा है, ये पागल है। और जो आत्मा का धन कमा रहा है वो बोलता है कि शरीर को समझकर शरीर के पीछे जो धन कमा रहा है पागल है। कमाने में कोई बुरी बात नहीं है, पर उस कमाने के चक्कर में असली धन अगर खो गया, मनुष्य जीवन चला गया, क्या लाभ। तो भक्तों के संग में यह धन मिलता है, क्योंकि भक्तों के जीवन में हम देखते हैं, अरे इसके पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी ये संतुष्ट है, फिर भी अपने आप को सुरक्षित मानता है, निश्चिंत है, निर्भय है, कुछ तो इसके पास है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी चिंता है, इतना पैसा है फिर भी चिंता है, इतना पैसा है फिर भी मैं हमेशा भयभीत रहता हूं, इतना पैसा है फिर भी हमेशा दुखी हूं मैं, इतना पैसा है पर किसी पे ऊपर प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरा पैसा लेने आ रहा है, और ये कुछ नहीं होते हुए भी हमेशा नाचता रहता है, गाता रहता है। इसके पास कुछ तो है जो मुझे भी चाहिए, इसीलिए शास्त्र कहता है सत्संग करो। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति का जन्म मूल कहां है, जहां साधु संग है। और जब सेवा शुरू करते हैं, भक्तों के संग में आकर सेवा शुरू करते हैं, तो एक आस्वादन मिलता है, सेवा का स्वाद। और जिसने सेवा का स्वाद किया है उस व्यक्ति को इस भवसागर पार करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। उसको पुनर्जन्म तुरंत चला जाता है, पर पुनर्जन्म नष्ट हो इसलिए भक्ति नहीं कर रहा है भक्त। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, इसका मतलब है उसको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से भी भय नहीं है। बोले मुझे इसी जन्म में रहने दो चलेगा, इसी भवयोग भवसागर में पड़े रहने दो, जहां तक आपकी सेवा, आपका स्मरण और आपका जो शाश्वत मेरा संबंध है आपके साथ, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, प्रभु ये संबंध नहीं भूलूं, आपका विस्मरण कभी ना हो और आपकी सेवा से मुझे मत निकालिएगा, ये सबसे बड़ा धन है। दुनिया क्या जाने इसको। हमारे एक भक्त थे, वो ब्रह्मचारी आश्रम में आए, आने के बाद बड़े पढ़े लिखे, पैसा बहुत कमा रहे थे, पर जब ब्रह्मचारी आश्रम में आए तो एक दिन वो मंदिर साफ कर रहे थे तो उनकी मां ने फोन किया, बेटा कैसा है तू, हाँ क्या कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा हूं, सर पीट लिया उसने। बोले इसलिए तेरे को पैदा किया, इसलिए तेरे को इतना बड़ा पढ़ाई वढ़ाई लिखा के इतना सब ये दिन देखने के लिए झाड़ू पोछा मार रहा है। अरे हमारे घर में झाड़ू पोछा मारने वाले कितने लोग हैं। वो बोला अरे माता जी ऐसे नहीं है कि आप सोचो किसका सेवा कर रहा हूं, मैं मंदिर में कर रहा हूं, भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं। समझना बड़ा मुश्किल है लोगों को, जिनको ये समझ नहीं है, जिनको भक्तों का संग नहीं है, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनको लगता है छे 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 बर्बाद हो गया, झाड़ू पोछा। अरे वैकुंठ में साक्षात लक्ष्मी देवी झाड़ू मारती है ताकि भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़े। देखने में दोनों एक ही है, बाहर भी कोई झाड़ू मार रहा है और अंदर भी भगवान के मंदिर में भी कोई झाड़ू मार रहा है। बाहर भी कोई कुकिंग कर रहा है, होटल में खाना पका रहा है, और इधर भी भगवान के लिए कोई बना रहा है। एक गृहस्थ जो भगवान की सेवा में लगकर घर में सेवा कर रहा है, खाना पकाकर प्रेम से भगवान को भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, और दूसरा जो घर में खाना पकाता और खाता है केवल। बाहरी रूप से दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक समझता है कि ये प्रेम महाधन है, भगवान की सेवा के रूप में कर रहा हूं, और दूसरा केवल इस शरीर को देखभाल करने के लिए और इसके विस्तृत रूप जो अपने इंद्र तृप्ति के वस्तु हैं इसको संभालने के लिए गधे के समान काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त बन गया तो हमारा कार्य बदल जाएंगे। दुर्योधन भी तीर चला रहा है और अर्जुन भी तीर चला रहा है कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। बाहरी रूप से दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, दोनों का बाहरी रूप से उद्देश्य भी एक ही है, जीतने का प्रयास कर रहे हैं, धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन चला रहे हैं, बच्चे को देखभाल कर रहे हैं। पर एक शरणागत भक्त में और इसमें यही अंतर है। तो अभी हम आरती के लिए जाएंगे, यह सबसे बड़ा धन है और यही चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हमें, प्रेम महाधन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज के दिन केवल कृपा ही कृपा है। तो आप सबसे निवेदन है कि अभी जो कीर्तन होगा, गौर आरती, संध्या आरती जो है गौर आरती, ये आज का सबसे प्रमुख अंग है आज के इस दिन का। कृपा अवलोकन करो आमी बड़ो दुखी, हम सब दुखी हैं, हम सब गरीब हैं, निर्धन हैं, हम व्यर्थ जा रहा है हमारा जीवन। तो आज अगर हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, चैतन्य महाप्रभु का ये जो दिन है आविर्भाव दिवस, केवल प्रेम धन देने के लिए आए हैं और पागल जैसे मदोन्नत होकर पात्र अपात्र न देख के बांटने के लिए तैयार है, सिर्फ हमें जाके हाथ बढ़ाना चाहिए उनके सामने। तो ये गौर आरती जो हम अभी हम करने जा रहे हैं उसका मतलब यही है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मैं आपकी शरण आया हूं, मैं भिखारी हूं, मैं आया एक भिखारी, कृपया आप मुझे धन दीजिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी मुझे आपका, दास के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, मैं एक ही वेतन मांगता हूं आपसे इस दासत्व का, मुझे प्रेम दीजिए आपके प्रति, और सेवा दीजिए, और स्मरण दीजिए, और आपकी शरण जाने की शक्ति दीजिए। तो ये अगर प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आज का जो गौर पूर्णिमा महोत्सव है ये यशस्वी है, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है, सार्थक है, और दरिद्र नहीं है, बड़े धनी हो जाएंगे हम। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी। तो अभी तुरंत हम कीर्तन के लिए जाएंगे। सब भक्तों से निवेदन है कि कीर्तन के दौरान ये एक प्रार्थना कीजिए निताय गौरचंद्र से कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो और हमारा जीवन सफल हो। हरे कृष्ण।